मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत हम लोग आईएएस 2022 की तैयारी के बारे में संभवतः थोड़ा सा ही सही लेकिन कुछ बातें कर सकें, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को जान लेते हैं। और ये घटनाएं या कह लीजिए समाचार अपने आप में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भी हैं। एक खबर जो दूरदर्शन न्यूज पर थी और यह खबर रेडियो न्यूज में मुझे सुनने को नहीं मिली, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, हो सकता है कि खबर आई हो लेकिन मुझे स्मरण नहीं हो रहा है। और वो खबर यह थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अभी तक इसके 100 सदस्य थे, जिसके बारे में शायद हम लोगों ने एक दो दिन पहले थोड़ी सी बात भी की थी, अब उसकी सदस्य संख्या 101 हो गई है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि सदस्य संख्या 100 से बढ़कर 101 हो गई है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिका इस गठबंधन का सदस्य हो गया है। और आप जानते हैं कि अमेरिका जैसा राष्ट्र अगर किसी गठबंधन का सदस्य बनता है तो उस गठबंधन की ताकत बहुत बढ़ जाती है, उसका फैलाव बहुत बढ़ जाता है और उसके सफल होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। क्योंकि देखिए, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास धन है, और यह इस बात को भी प्रमाणित कर रहा है कि अमेरिका का जो वर्तमान प्रशासन है या जो वर्तमान सरकार है वो किस तरीके से जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसे महत्व दे रही है। क्योंकि देखिए, जो पेरिस सम्मेलन वगैरह के बाद की जो बातें हैं, तो जो इससे पहले जो राष्ट्रपति थे ट्रंप, वो इसे महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को उससे अलग भी कर लिया था। तो अमेरिका का इस अलायंस से जुड़ना एक महत्वपूर्ण घटना है, इसे मैं घटना कहूंगा क्योंकि अब आगे और इसी से जुड़ी घटनाएं घटती चली जाएंगी। एक जो बहुत महत्वपूर्ण खबर कल जो दूरदर्शन न्यूज पर बहुत विस्तार से है, रेडियो न्यूज पर भी है और आज के अखबारों में भी है, अखबारों में तो खैर बहुत छोटे से रूप में है लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी समझ से आप समझ भी गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। दोस्तों, मेरा इशारा है 15 नवंबर को जो केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है, अब से जो 15 नवंबर है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शायद आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना हो। बिरसा मुंडा झारखंड क्षेत्र के एक आदिवासी लीडर थे। आदिवासी लीडर होने के साथ साथ वे एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे। उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था और खासकर लगान माफी के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। और बाद में फिर आप जैसा कि जानते हैं, अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया और फिर सजा सुनाई और अंत में सन 1900 में उनका निधन हो गया। हजारीबाग जेल में उनको रखा गया। उनके समय में ही, यानी कि जब वो जीवित थे तभी उन्हें जो आदिवासी समुदाय था वहां का, वह एक तरह से ईश्वर की तरह मानता था। मतलब उनकी इतनी जबरदस्त पकड़ थी और अपने क्षेत्र में वो धरती बाबा के नाम से जाने जाते थे। और जब उनका निधन हुआ उस समय उनकी उम्र थी केवल 25 वर्ष, केवल 25 ईयर्स, सोच करके देखिए। चलिए, ये तो एक घटना हो गई है ना, उन्हीं से संबंधित है ये 15 नवंबर। लेकिन सिविल सर्विस में इसके जरिए क्या आपको तैयारी करनी है? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से जो उभर करके आ रही है वो ये है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जो आदिवासी समूह रहा है, जिनमें जनजातियों को भी आप रखेंगे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। जनरली ये कहा जाता है कि इसकी उपेक्षा हुई है। स्वाभाविक है कि थोड़ी सी उपेक्षा तो हुई है, लेकिन अब इस पर बहुत ज्यादा काम होने लगे हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि बकायदे इस पर चैप्टर्स भी इतिहास के हैं और लेक्चर्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। अब ये जरूर है कि जैसे 1857 के आसपास कहा जाता है कि लगभग 150 आंदोलन हुए, आदिवासी और जनजातियों के आंदोलन हुए हैं, अब सबका उल्लेख किसी इंसाइक्लोपीडिया में तो दिया जा सकता है लेकिन इतिहास में नहीं दिया जा सकता। अगर आपको पढ़ने को कहा जाए तो आप कितने आंदोलन को पढ़ेंगे? इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है, जिनका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त रूप से रहा, आप केवल उन पर ध्यान दें। देखिए, जो उस समय आंदोलन हो रहे थे, जो आदिवासी समाज जो आंदोलन कर रहा था, और हमारे किसान भी उसमें शामिल थे, चाहे वो भले ही आदिवासी समाज के न हों, उसके दो मुख्य कारण थे। अगर हम जनजातियों की बात करें तो दो सर्व प्रमुख कारण थे। पहला तो यह था कि लगान माफी के लिए, अकाल पड़ गया लेकिन अंग्रेज सरकार लगान मांग रही है तो लगान माफ किया जाए। जो दूसरा आंदोलन होता था वो था वनों पर अधिकार। अंग्रेज जैसे ही आए उन्होंने वनों को एक संसाधन के रूप में लेना शुरू किया, एक्ट पारित किया और वनों पर से जो अब तक जनजातियों के अधिकार होते थे उन्हें खत्म कर दिया। अब ये जो वन जो जनजातीय समूह थे जंगलों में रहते थे, वन उनके आप यूं कह लीजिए जीवन निर्वाह का सबसे बड़ा आधार था, सबसे बड़ा साधन था, उसे आपने वंचित कर दिया। तो इन अधिकारों के लिए भी संघर्ष हुए हैं। तो दो सबसे महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप ये मान करके चलिए कि हमारे यहां जो जनजातीय विद्रोह हुए हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फिलहाल कुछ समय के लिए तो बन गया है, इस पर आपको तैयारी करनी चाहिए। जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो कि जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सांसदों को रकम दी जाती थी, धन दिया जाता था, कोरोना के समय में उसे बंद कर दिया गया था और यह था कि इस रकम का इस्तेमाल जो है इस धन का इस्तेमाल बकायदे इसके कोरोना के लिए जो जरूरत है धन की उसमें किया जाएगा, लेकिन सरकार ने अब इसे ओपन कर दिया है। ये आपके अपडेट करने के लिए मैं बता रहा हूं। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अब जो भी वक्त बचा है इस दौरान उनको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इसके बाद फिर 1 वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए प्रत्येक सांसद को दिए जाएंगे। पहले भी इसकी राशि 5 करोड़ ही थी बंद करने से पहले और यह राशि अभी कुछ समय के लिए 2025 तक के लिए अभी निर्धारित कर दी गई है। ये जो सांसद निधि है बेसिकली इसका पर्पज यह है कि जो सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में वहां की जरूरतों के हिसाब से विकास का कार्य कर सकें ताकि वहां के लोगों की जो तुरंत की डिमांड होती है जो एक अर्जेंट तत्काल डिमांड होती है उसकी पूर्ति हो सके। तो इस पर मुझे ध्यान आ रहा है कि 3-4 साल पहले क्वेश्चन भी आया था तो इसे आप अपडेट कर लें, बकायदे ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए। अफगानिस्तान के बारे में कल हम लोगों ने बात की थी फ्रेंड्स, बकायदे बैठक हो गई है और बैठक होने के बाद दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान जारी हो गया है जिसमें 12 सूत्री घोषणाएं की गई हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कही गई है, 2 महत्वपूर्ण बात है। पहला तो यह है कि जो अफगानिस्तान है वहां समावेशी सरकार का गठन होना चाहिए। समावेशी सरकार का मतलब है कि जो समाज के जो सभी वर्ग के लोग हैं उनको समाहित करने की कोशिश की जाए। दूसरी बात यह कही गई है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यह चिंता व्यक्त की गई कि अफगानिस्तान में जो अभी वर्तमान स्थिति है तो आसपास के पड़ोस के जो राष्ट्र हैं वहां आतंकवादी गतिविधियां घटनाएं होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं, इसीलिए ये कहा गया है कि अफगानिस्तान जो है अपने यहां आतंकवादी घटनाओं को न होने दे, अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादियों को न करने दे, आतंकवादियों को अपने यहां न तो शरण दे और न ही प्रशिक्षण दे और न ही उन्हें धन मुहैया कराए, उपलब्ध कराए। तो इसके बारे में हम लोग कल बात कर चुके थे लेकिन फिर भी आपकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए। अब मैं आता हूं दोस्तों आज के मुख्य विषय पर। आईएएस 2022 की तैयारी का ये 11वां हिस्सा है। चूंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे। अखबारों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, खासकर न्यूज के बारे में। यहां एक दो बातें मैं और करना चाहूंगा, कुछ आप लोगों के इस बीच में मेल भी मिले हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए। न्यूज़पेपर का जो मीडियम होगा आप वही रखें जो एग्जामिनेशन का आपका मीडियम है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बेहतर है कि आप इंग्लिश मीडियम का न्यूज़ पढ़ें और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो बेहतर है कि आप हिंदी मीडियम के न्यूज़ पढ़ें और अगर आपका रीजनल मीडियम है तो देखिए कि रीजनल मीडियम में रीजनल पेपर अगर कोई आपके रीजनल लैंग्वेज में आ सकता है तो आपको वही पढ़ना चाहिए। उसका कारण है, कारण यह कि न्यूज़पेपर आप रोज पढ़ेंगे, उस भाषा के संपर्क में आएंगे। भाषा एक प्रवाहित नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है, नए नए शब्द आते रहते हैं और अगर नए शब्द नहीं भी आए तो आपके दिमाग में भाषा रचती बसती है। ऐसा नहीं कि आप अचानक किसी भाषा का जन्म कर देंगे और फिर आप लिख करके आ जाएंगे, है ना। भाषा में प्रवाह होना चाहिए, लिखने में भी और आपके विचारों में भी। और एग्जामिनेशन में बहुत बड़ी चुनौती होती है कि आप फटाफट जल्दी से जल्दी लिखें क्योंकि वहां आपके पास वक्त नहीं होता। तो आपको अपने भाषा को रिदम में ढालना पड़ेगा और यह रिदम में भाषा तभी ढलेगी जब आप लगातार उसके संपर्क में रहें। तो न्यूज़पेपर भी आपकी अपनी ही लैंग्वेज में होनी चाहिए, अपनी लैंग्वेज मतलब सिविल सर्विस का जो मीडियम है उसमें होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको एक मैगजीन भी सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। जिस मैगजीन की मैं बात कर रहा हूं उसका संबंध कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैगजीन से है। हिंदी में इंग्लिश में तो अवेलेबल हैं, रीजनल लैंग्वेज के बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी है नहीं, लेकिन यहां भी वही भाषा आपको इस्तेमाल करनी है जो आपके एग्जामिनेशन की भाषा है। हाँ, अगर आपको दूसरे मैगजीन से थोड़ी सी मदद लेनी है, दूसरे मैगजीन से मतलब दूसरी भाषा की मैगजीन से, तो आप ले सकते हैं, लेकिन जो मुख्य आपकी किताबें होंगी या मुख्य आपके जो न्यूज़पेपर होगा, मुख्य आपके यहां तक कि न्यूज़ भी जो होगा, अब देखिए रेडियो न्यूज़ और दूरदर्शन न्यूज़ तो हिंदी और इंग्लिश में ही, हालांकि रीजनल लैंग्वेजेस में भी होने लगे हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूज़ तक तो बात बन जाएगी। लेकिन जब आप रिटन फॉर्मेट में आएंगे, यानी लिखित अक्षरों के रूप में, क्योंकि अक्षर फिर हमारी आंखों के जरिए हमारे मस्तिष्क में उतरते बसते हैं, रचते हैं, तो वहां फिर आपको अपने ही मीडियम का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात बहुत भर दी गई है कि बिना हिंदू पढ़े हुए कोई आईएएस नहीं बन सकता, बिना इंडियन एक्सप्रेस के कोई आईएएस नहीं बन सकता। मुझे लगता है कि आपको इस भ्रम से मुक्ति पानी चाहिए। मान लीजिए कि आपने आईएएस बनने का फैसला कर लिया है, आप इंग्लिश नहीं जानते, तो आप हिंदू अखबार नहीं पढ़ सकते, आप इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ सकते, तो क्या आप आईएएस बनेंगे ही नहीं? क्या ऐसा ही होता चला आ रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हिंदू अखबार को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो ठीक है, आप हिंदू अखबार पढ़िए। मैं खुद आपसे कहूंगा कि आप हिंदू पढ़ लीजिए, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, या फिर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ हिंदू ही पढ़ें या सिर्फ फलाना अखबार ही पढ़ें। इंपॉर्टेंट अखबार नहीं है, लेकिन उसका लेवल तो एक होना ही चाहिए, जैसा कि मैंने कहा कि नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फिर यह है कि उसमें से जो आप चयन कर रहे हैं वो किसका चयन कर रहे हैं, और फिर आप उसको पढ़ किस तरीके से रहे हैं। चयन करने के लिए सिलेबस आपकी मदद करेगा, पढ़ने के तरीके के लिए डेफिनेटली वो आपके पास कला होनी चाहिए, वह आपकी मदद करेगी। तो इस बारे में आपको बहुत ज्यादा भ्रम में, संदेह में, द्वंद में नहीं रहना चाहिए। बहुत स्पष्टता के साथ आप एक नेशनल लेवल का अखबार चुन लें और उस पर थोड़ा सा वक्त ध्यान से लगाएं। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: शिवराम साव, डॉली झा, पंकज त्रिपाठी बलरामपुर उत्तर प्रदेश से, और अनीशा वर्मा। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।